दोस्तों, आपका दोस्त सुप्रीत फिर से आपके साथ है। और जैसा आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हम एक वार्तालाप लेकर आए थे स्वामी भक्ति रस अमृता जी के साथ, और कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातें हो रही थी। स्वामी जी यहाँ पर सिडनी में आए हुए हैं भारत से, और इस्कॉन मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका सेमिनार था से 2 हफ्ते पहले, और इसके अलावा वो दुनिया भर में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जो भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, भक्ति को लेकर जो भी किसी के पास क्वेश्चंस होते हैं उनके वो आंसर्स लेकर आते हैं। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमारे साथ वो वार्तालाप में हैं। पिछले हफ्ते हम इसी वार्ता का पहला पार्ट लेकर आए थे, और अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। और जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम आखिर में किया था, मैं स्वामी जी उसी क्वेश्चन से शुरू करना चाहूंगा। मैंने ये पूछा था कि कई बार लोगों के मन में ये शंका आती है कि अगर मेरा और भगवान का रिश्ता एक पिता और पुत्र का रिश्ता है, तो मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए। मैं तो सीधा ही अपने पिता से बात कर सकता हूँ, मेरे को मंदिर क्यों चाहिए या किसी और पुजारी की क्यों चाहिए सहायता कि मैं अपने पिता से बात करूँ, मेरे को थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। और आपने जवाब दिया था, और मेरा ख्याल है कि हम उसी वार्ता को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर किसी के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उस समय उसे पता नहीं होता कि पिता कौन है। और जब वो अपनी माँ से पूछता है, फिर माँ कहती है देखो ये पिता है। तो यदि पिता कौन है ये हम जानना चाहते हैं कि माँ से पूछना चाहिए। तो इसी तरह जब हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें पता नहीं है कि हमारे पिता हैं कौन। भगवान हैं, परंतु ये भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो फिर माँ से पूछना चाहिए। तो माँ कौन है? वेद शास्त्र जो हैं, ये माँ है। तो वेदों से हमें ज्ञान मिलता है भगवान के बारे में, फिर हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और फिर वेदों को समझाने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए, वो है गुरु। तो वो सत्संग में जाके हमें पता चलेगा कि वेदों में क्या कहा गया है, वो दोनों माता और पिता की पहचान करा के देंगे हमें। और एक बार हम इस स्तर तक पहुंच जाएं, आध्यात्मिक जीवन में इतने हम आगे बढ़ जाएं, फिर हमारा संबंध जो है भगवान के साथ अपने आप स्थापित हो जाता है।
इसी तरह से स्वामी जी, कई बार आता है कि अब आप सिडनी में आए हैं तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज्यादा मानते हैं, भारत में तो कई रिलीजन्स हैं, हर एक ने अपने अपने खुदा, अपने अपने गॉड, अपने अपने भगवान बनाए हैं, लेकिन स्रोत तो एक ही है। जैसे आप कह रहे थे कि स्रोत जो होता है वो एक ही होता है, गॉड तो एक ही है, भगवान एक है। हर धर्म ये कहता है भगवान एक है, लेकिन हर एक ने अपने अपने रास्ते बनाए हैं या अपने अपने खुदा, अपने अपने भगवान बनाए हुए। तो क्वेश्चन ये आता है कि गॉड है क्या? व्हाट इज गॉड? हु इज गॉड? एंड why आर देर सो मैनी गॉड्स इन दिस वर्ल्ड? सिर्फ इसलिए कि लोगों के पास अलग रास्ते हैं उस तक पहुंचने के लिए? तो भगवान क्या है, इतने रास्ते सालवेशन के क्यों हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है?
वैसे भगवान एक ही है। भगवान कौन है, उनकी परिभाषा क्या है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो भगवान। बस इतनी सरल परिभाषा है।
जी जी।
तो यदि इस परिभाषा को हम मन में रखें, तो फिर क्या अनेक धर्मों में ऐसे झगड़े वगैरह हो सकते हैं? पर ऐसा तो है नहीं ना कि आसमान में ईसाई भगवान है और हिंदू भगवान है, मुसलमान भगवान है, आपस में लड़ रहे हैं, सब ऐसे तो नहीं।
बिल्कुल।
जब परिभाषा ये है कि भगवान वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ एक ही है, और अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समय पर, अलग अलग समाजों में, लोगों के बीच में भगवान अपने आप को प्रकट कराते हैं। उनके जो आचार्य होते हैं, मसीह होते हैं, या जो भी कहिए, उनके द्वारा वो अपने आप के बारे में ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं। समय समय पर लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो उनकी जानकारी के लिए, उनके स्तर के हिसाब से उनको वो ज्ञान दिया जाता है। इसलिए यदि किसी एक भाषा में उनको अल्लाह कहा जाए, किसी दूसरे भाषा में जेहोवा कहा जाए, किसी तीसरे भाषा में कृष्ण कहा जाए या राम कहा जाए, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो कृष्ण शब्द की विशेषता ये है कि इसका मतलब है सर्व आकर्षक, तो ये और एक मतलब है भगवान का।
अच्छा,
तो गॉड और भगवान इज वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव गॉड, तो यही कृष्ण का अर्थ है। तो क्योंकि श्री कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव हैं, सर्व आकर्षक हैं, तो हम उनके शरण में जाते हैं, तो इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं है।
बहुत अच्छी बात कही आपने स्वामी जी। और आजकल के हम पिछले हफ्ते भी हमने ये बात छेड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर से टच करना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान ज्यादा रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं एक अच्छा ह्यूमन बींग हूँ, मैं एक अच्छा इंसान, और उसकी परिभाषा है कि वो चैरिटेबल है, वो ट्रूथफुल है, वो अच्छे कार्य कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, लोगों को फ्री अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो क्या उसके लिए ये अनफ नहीं है, या उसके लिए ये जरूरी है कि वो भगवान में फेथ करे, उनको बिलीव करे? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सोसाइटी में नास्तिक लोग भी होते हैं, और वो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या भगवान से जुड़ना जरूरी है, उस सल्वेशन पाथ के जाना जरूरी है, कि ये अच्छाई या चैरिटेबल काम करना ही एक वो सल्वेशन पाथ है उनके लिए?
यदि हम किसी की भलाई करना चाहते हैं तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक कि इरादा सही होना चाहिए कि हम दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, इसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ज्ञान भी होना चाहिए। समझ लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, इरादा हमारा सही है, इसकी भलाई करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, और हम डॉक्टर बनके निकल पड़ते हैं, हमारे डॉक्टरी का ज्ञान कुछ नहीं है, उल्टा उसकी बुराई होगी।
बिल्कुल।
तो हमारे लिए सही ये है कि हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं जिसके पास ज्ञान है। तो इरादा ही होना इतना काफी नहीं है, साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। तो जो समाज में कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज चल रहे हैं, ये अच्छे हैं और इनकी भी आवश्यकता अवश्य है। इरादा भी कईयों के अच्छे हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके इरादे ठीक नहीं है, वो अपने नाम के लिए, इज्जत के लिए कर रहे हों भले, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो अपनी शुद्ध भावना से दूसरों की भलाई चाहते हैं। इरादा ठीक है, परंतु ज्ञान का अभाव है,
नॉलेज।
इसका मतलब है कि उन्हें ये नहीं पता कि हम वास्तव में आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो यदि उनसे पूछा जाए कि आप इनके लिए जो भलाई का काम कर रहे हैं, इससे कितने समय तक इनको फायदा मिलेगा, एक भूखे को आप भोजन दिला रहे हैं, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर से भूखा हो जाएगा, एक गरीब को थोड़े पैसे देते फिर से थोड़े दिन बाद उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम जो मदद कर रहे हैं दूसरों को कल्याणकारी कार्यों के नाम से, चैरिटेबल एक्टिविटीज, उसकी जो पहुंच है या गहराई है सीमित होती है। अच्छे काम है परंतु सीमित है। यदि हमें कोई ऐसे अवसर मिलता कि हम हमेशा के लिए इसकी भलाई कर सकते, यदि हम ऐसे कोई कल्याणकारी कार्य करते कि व्यक्ति को मृत्यु के ऊपर जीत मिल जाती, एक ऐसे जीवन की अवस्था में लाते उसे कि उसे बूढ़ा नहीं होना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता, बीमार नहीं होना पड़ता, तो फिर क्या ये सबसे अच्छा नहीं है? Is this not the ultimate solution to all problems? और ये है आध्यात्मिक जीवन, भगवान की भक्ति। तब इसमें लग जाते हैं और दूसरों को इसमें लगाने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति को हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाते हैं, जिससे कि उसे भौतिक शरीर ग्रहण करना ही नहीं पड़ता, और ये भौतिक शरीर ही हमारे कष्टों का कारण है, और इन कष्टों के निवारण करने के लिए फिर लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं। परंतु यदि हम आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करें तो फिर शरीर प्राप्त करने की ही आवश्यकता नहीं होती, तो मूल से, जड़ से हम समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो ये टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी।
बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी, भक्ति ही सोल्यूशन है, भक्ति ही सल्वेशन का सोल्यूशन है, भक्ति ही हमें भगवान से जोड़ती है। पर एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि आज की इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी, जहाँ मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैंने बच्चों को बड़ा करना है, मैंने परिवार को देखना है, मैंने कुछ कमाना है, माँ बाप को देखना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं भक्ति की तरफ कैसे ध्यान दूँ, ये क्वेश्चंस भी आते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में?
हाँ, ऐसी धारणा तो कईयों की है। सवाल ये है कि हम इस चीज को महत्व कितना देते हैं। जिस चीज को महत्व देते हैं उस चीज के लिए समय तो निकालते ही है ना। आज यदि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच चल रहा हो, सब छोड़ के हम जाएंगे देखने के लिए, उस समय सोचेंगे नहीं कि नौकरी है या घर में कौन है, क्योंकि उसको इतना महत्व दे रहे हैं। जहाँ है चाह वहाँ है राह। तो उसी तरह से यदि हमारी चाह बहुत तीव्र हो जाए, हमारी बुद्धि बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाए, तब हम समय निकालेंगे। प्रायोरिटीज ऐसे हमारे हम बनाएंगे कि भगवान के लिए अपने आप समय निकलते रहे।
अब हम एक बहुत ही खास संदेश है गीता का, और वो संदेश है कर्मा का, कि कर्मा क्या है, कर्मा क्या है एंड उसके लॉज क्या है। कर्मा इन अगर थोड़े शब्दों में कहना हो, हमें किसी को आसान भाषा में समझाना हो, तो कर्मा क्या है स्वामी जी?
बहुत सरल है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन,
एक्शन रिएक्शन,
बस
जैसा करोगे वैसा भरने,
जैसे करनी वैसे भरनी। अच्छे काम करेंगे अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करेंगे बुरा परिणाम होगा, बस।
पर कई बार ऐसा होता है स्वामी जी, हमने देखा है कि जितने भी बुरे काम करने वाले हैं वो तो दुनिया के पूरे सुख मना रहे हैं, और अच्छे काम करने वाले बेचारे अपनी रोजी रोटी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आरानिक नहीं लगता आपको, थोड़ा सा पैराडॉक्स नहीं लगता है?
भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो जो अभी बुरे काम कर रहे हैं और जो सुख को भोग रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि उन्होंने पूर्वकृत जो पुण्यों के फल पर अब इस अवस्था की प्राप्ति की है कि वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। परंतु जैसे जैसे सुख का अनुभव करेंगे तो पुराने पुण्य कार्य जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। उसके बाद रह जाएगा उनके अब के पाप कार्य, उनके फल उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर जो अभी अच्छे काम कर रहा है बेचारा, परंतु उसमें कोई उसके कोई पुराने बुरे काम हुए होंगे तो उनके फल उसे अभी मिल रहा है। अब जब दुख होगा, कष्ट होगा, कष्ट झेलने से पुराने पापों के फल मिल जाते हैं, फिर रहेंगे क्या
सुख।
अब जो किए हुए अच्छे कार्य हैं वो रह जाएंगे तो उसका सुख हो भोगेगा। तो इस तरह से कर्म का चक्र चलता है, परंतु इस कर्म के चक्र से हमें निकलना है भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें दोनों हमें जन्म लेने के लिए बात ही करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने से हम ये अच्छे और बुरे के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर हम मुक्त हो जाते हैं।
तो स्वामी जी, क्या भक्ति की हम बात कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम भक्ति ध्यान से या भक्ति दिल से करेंगे तो इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन क्या भक्ति में तो रिस्ट्रिक्शंस हैं? कोई क्या उसके कोई लॉज हैं? क्या इस जीवन में बाहर के मुल्कों में रहते हुए हम अपनी भक्ति को पूरी तरह से कर पाएंगे? क्या उसमें कुछ पोल्यूशन हो जाता है? क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि एक बार कहा जाता है कि भक्ति करते हुए अगर आप भक्ति में हैं, मीट ना खाएं, कई रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, मीट ना खाएं, मांस ना खाएं, शराब ना पिए, ठीक है, बहुत लोग इसको पालन भी करते हैं, कहीं भी रहे वो पालन करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं कर पाए। तो पहली चीज, दो क्वेश्चन है बेसिकली, कि क्या भक्ति के रिस्ट्रिक्शन हैं को, और अगर हैं तो उनके साथ आज के मॉडर्न युग में कैसे रहा जा सकता है?
ये भी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आजकल रिस्ट्रिक्शन या कोई जो बंधन होते हैं किसी को अच्छे नहीं लगते, परंतु सोचिए बंधन नहीं होते जीवन में तो कितना उत्पात हो जाता
जी।
हम गाड़ी चलाते हैं, अब सिडनी में कितने अच्छी तरह से सब ट्रैफिक चलता है, सब अपने अपने लाइन में चलते हैं, इशारे करते हैं, राइट लेफ्ट घूमने रुकते हैं, इसलिए सब ठीक ठाक चलता है। हो सकता है कभी कभी हमें हम उब जाएं कि भाई ये लाल बत्ती है, अरे अरे अभी रुकना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि यदि नियम नहीं होते तो कितना और कष्ट होता। समझ लीजिए कि इस हर एक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से गाड़ी चलाता है, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, जिसे जैसा पसंद है वैसे गाड़ी चलाता है, तो क्या हालत होगी सड़कों पर
जी,
कितना कष्ट होगा। तो नियम जो होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं संसार में। नियम के बिना सब उत्पात हो जाएगा, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि प्रेम में भी कोई नियम होते हैं। हालांकि प्रेम जो है स्वाभाविक होता है, परंतु वास्तव में यदि वो स्वाभाविक है तो हम सारे नियमों का पालन भी करेंगे। जैसे समझ लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम है, तो क्या उसमें कोई नियम है? जैसे उदाहरण से कि उनमें से एक व्यक्ति किसी दूसरे तीसरे के साथ संबंध नहीं रखे, नियम है ना ये? तो व्यक्ति कहे भाई हम प्रेम करते हैं, नियम क्यों चाहिए? नियम तो है, प्रेम में भी तो नियम होते हैं। जब इस दुनिया के संबंधों में प्रेम में नियम होते हैं, तो जब भगवान के साथ में हम प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो क्यों नहीं।
दूसरा साथ में इसी से जुड़ा क्वेश्चन था स्वामी जी के, कई बार इस मुल्क में रहते हुए नहीं अवॉइड कर पाते हम मांस को खाना, या नियमों का पूरी तरह से पालन कर पाना हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहीं पर ये कहा गया है या कितना इम्पोर्टेंट है इन नियमों का पूरी तरह से पालन करना, या थोड़ा सा हम लिमिट भी हो सकते हैं?
ये इस पर निर्भर होता है कि हमारी इच्छा कितनी तीव्र है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की। यदि हम हल्के रहें तो ठीक है, उतना ज्यादा समय लग जाएगा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हम तीव्रता से करें तो उतनी कम समय में हम सफल हो जाएंगे।
तो दोस्तों वही बात आती है कि नियम बहुत जरूरी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो भक्ति में ही क्यों ना हो। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि आपकी इच्छा कितनी है, आप कितना स्ट्रिक्ट अपने आप को स्ट्रिक्ट कर पाते हैं उन नियमों के साथ। स्वामी जी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन सवाल का जवाब शायद कम ही मिल पाया है कि डेथ क्या है, मौत क्या है, और मौत के बाद क्या होता है। ये क्वेश्चन अमूमन आता है लोगों के मन, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
भगवद गीता के अनुसार बहुत सरल बात है ये, के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि मृत्यु आत्मा के शरीर को त्यागने का समय है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो ये मृत्यु है। शरीर तो वैसे मृत है, हर अवस्था में मृत है, केवल आत्मा के शरीर के अंदर रहने की वजह से ही शरीर कार्य कर पाती है। लेकिन एक बार आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता। This is the definition of death.
और इसी के साथ जुड़ा क्वेश्चन था स्वामी जी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उसके बारे में, क्या रीइनकार्नेशन है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है?
हाँ जरूर, रीइनकार्नेशन या पुनर्जन्म है। और जैसे व्यक्ति ने इस जीवन में कर्म किए हैं उस हिसाब से उन कर्मों के फल जो है उसे मिलेंगे एक किसी विशेष शरीर के रूप में, चाहे वो मनुष्य योनि में हो या चाहे वो किसी जानवर के योनि में, पक्षी के योनि में, तो कर्म के अनुसार उसे एक पुनर्जन्म मिलेगा।
तो इसमें आपने दो बातें कही कि एक तो है कि रीइनकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, और दूसरा ये कि हमें मुक्ति भी पानी है ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। तो आपने जैसे भी बताया कि कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुक्ति पा गए या आपने फिर से जन्म ले लिया, तो इसकी कोई जो अलग अलग जन्म मिलते हैं, अलग अलग प्राणी हैं, इंसान का दोबारा इंसानी रूप में आना वो संभव है उसको अपने लिए दोबारा अपने आप को और प्योर करने के लिए, या वो अपने कर्मों के हिसाब से पूरी दुनिया को घूम कर आता है, पूरी दुनिया में अपने जीवन देकर आता है। कहते हैं, कई कहते हैं 84 करोड़ जीवन, कुछ कई कहते हैं कि इतने जीव हैं, दैट मीन्स उसके बाद इतना साइकिल उसका लंबा हो जाता है, उसके बाद उसको आना पड़ता है। तो पहली चीज तो ये मैं पूछना चाहूंगा स्वामी जी कि अगर दोबारा इंसान को इंसानी जोड़े में ही आना है तो उसके लिए क्या उसको करना चाहिए? भक्ति आपने बताई, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई रूल्स हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि वो कब तक ऐसा चलेगा कि वो इस संसारी जीवन से टोटली मुक्त हो जाए?
वैसे हमारा पुनर्जन्म किसी भी योनि में हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम हमारा जन्म पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही हो। यदि हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि मनुष्य जीवन के लिए हम अधिकारी नहीं हैं, तो हमें कोई दूसरी योनि मिल जाए। तो यदि आप ये निश्चित करना चाहते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए, तो कम से कम हमें भक्ति भगवान की करनी चाहिए थोड़ी। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि थोड़ी बहुत भी कोई व्यक्ति मेरी भक्ति इस जीवन जन्म में कर लेता है, तो उसे दूसरा जन्म कम से कम मनुष्य देह तो मिलना है। अब मनुष्य देह में आने के लिए अनेक रास्ते हैं, जैसे नीचे निम्न श्रेणी की जो योनियां हैं, उनमें से भी आत्मा ऊपर आते आते पहुंच जाती है मनुष्य में। जो देव योनियों में से भी आत्मा नीचे गिर के नीचे मनुष्य योनि में आ जाते हैं, और जो मनुष्य योनि में है उनमें से भी पुनर्जन्म मनुष्यों में होता है। तो ऐसे कई ऑप्शंस हैं, कई तरीके हैं जिनसे जीव जो है आत्मा मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मनुष्य योनि को प्राप्त करके हम यदि भगवान की भक्ति करें, तो कम से कम हमें अगला जन्म मनुष्य शरीर तो मिलेगा, जिसमें हम भगवान की भक्ति को आगे बढ़ा पाए।
स्वामी जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में मंत्र चलता है हरे रामा हरे कृष्णा। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मंत्रस? अगर मैं कोई और मंत्र का जाप कर रहा हूँ भगवान की तरफ लगन लगाने के लिए, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मंत्रस? हर रिलीजन के डिफरेंट मंत्र होते हैं, तो क्या वो सालवेशन का पाथ से हमें दूर ले जाते हैं, या हरे कृष्णा हरे रामा से ही हमें सालवेशन की तरफ पाथ मिलता है?
वैसे भगवान तो एक है, जिसकी चर्चा पहले कर रहे थे। तो भगवान के नाम का उच्चारण करना ये हर एक धर्म ग्रंथ में पाया जाता है। तो हर एक को चाहिए कि वो भगवान का नाम ले। अब हमारे जो वैदिक सभ्यता में एक उपनिषद है, कलि संतरण उपनिषद, इसमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया हुआ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस मंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु यदि कोई किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनको अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर कुछ मंत्र बोलना है, अवश्य बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु हाँ, भगवान के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना जरूरी है, किस भगवान का नाम हम ले रहे हैं और उनके और कितने नाम है, उनका रूप क्या है, उनके कार्य कौन से हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, ये सब हमें सीखना चाहिए।
बहुत अच्छा आपने कहा स्वामी जी। समय धीरे धीरे, समय की लिमिट है हमारे लिए, बहुत ही हमें दुख हो रहा है कि हम और बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन एक ये जरूर पूछना चाहूंगा। आपने भी देखा होगा अलग अलग मुल्कों में घूमे हैं, अलग अलग देशों में घूमे हैं, और बच्चे जो है, आज का जो यूथ है, वो थोड़ा सा अपने रूट से अलग होता जा रहा है। कुछ हद तक उनका फॉल्ट नहीं है, कुछ हद तक हो सकता है माँ बाप का ही फॉल्ट हो कि उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज के यूथ के लिए जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, या जिनके माँ बाप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बसे यूथ के लिए, आपका कोई संदेश?
हाँ बिल्कुल, यदि किसी पेड़ के जड़ कमजोर होते हैं, तो पेड़ कभी भी गिर सकता है। यदि जड़ें मजबूत हैं, तो फिर व्यक्ति तूफान में भी खड़ा रह पाएगा। और जीवन में तो तूफान आएंगे ही आएंगे। तो यदि हमारे जड़ें, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं है, कल्चरल रूट्स जो कहते हैं, वो मजबूत नहीं है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं, तूफाने हैं अलग अलग देशों के, वो उखाड़ के ले जाएंगे, और फिर हम न यहाँ के रह जाएंगे न वहां के। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे रूट्स को, कल्चरल स्पिरिचुअल रूट्स को नहीं भूलें।
बहुत अच्छा संदेश दिया स्वामी जी आपने, और जो लोग ये कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने कल्चर रूप से, अपने आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहना, अपने रिलीजियस रूप से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और वही जो रूट्स हैं, वही जो मैसेज है अपने बच्चों में पहुंचाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए, हमारे साथ बातचीत की, आपने समय निकाला। मुझे यकीन है कि जब आप अगली बार हमारे पास सिडनी में आएंगे तो हम इन बातों का सिलसिला फिर से जारी रखेंगे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सेवा में हम उपस्थित रहेंगे अगली बार। हरे कृष्णा।